सब कुछ मेरे प्रति समर्पण करते हुए, कुछ लाभ की इच्छा न करते हुए आप लड़ाई करिए।
Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita.
ये श्लोक में भगवद गीता का उद्देश्य साफ बताया गया है।
The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties.
भगवान बता रहे हैं कि अपना कर्तव्य करने के लिए व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है।
As if in military discipline,
जैसे कि मिलिट्री में होता है।
Such an injunction may make things a little difficult.
इससे कोई कार्य थोड़े मुश्किल हो सकते हैं।
Nevertheless, duties must be carried out.
फिर भी कर्तव्य को करना चाहिए।
With dependence on Krishna.
कृष्ण पर निर्भर रहते हुए।
Because that is the constitutional position of the living entity.
क्योंकि वही जीवात्मा की सामाजिक स्थिति है।
The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord.
भगवान से सहयोग किए बिना जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता।
Because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desires of the Lord.
क्योंकि जीव का यह स्वभाव है कि भगवान के इच्छाओं के अधीन होना।
This beautiful sloka from the third chapter of Gita clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita.
गीता के इस श्लोक में भगवद गीता का सही उद्देश्य अंकित किया गया है।
Krishna is explaining to Arjuna and to all of us what is the real principle of renunciation.
कृष्ण अर्जुन को और हम सबको बता रहे हैं कि सच्चे वैराग्य का क्या उपाय है।
To perform our duties,
अपने कर्तव्यों को करना,
but surrendering all of our works to Krishna,
लेकिन अपने सारे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करना।
In the execution of our duties, we should not desire profit, nor should we claim proprietorship over anything.
अपने कर्तव्य करते हुए हमें अपने लाभ का नहीं सोचना चाहिए और किसी भी चीज पे अपना मालिकपन नहीं जमाना चाहिए।
We should understand in full knowledge that everything is the property of Krishna and all things should be done in service with devotion for the pleasure of Krishna.
हमें जानना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है और हर एक चीज को कृष्ण की सेवा के लिए और कृष्ण के प्रेम के लिए करना चाहिए।
कृष्ण concludes this statement that we cannot be lazy.
Krishna कहते हैं कि हम आलसी नहीं हो सकते।
We must be very enthusiastic to fight for him.
उनके लिए युद्ध करने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए।
The tendency of the conditioned soul is to want to misunderstand Krishna's teaching, either one extreme or the other.
ये जीव का स्वभाव है कि कृष्ण की शिक्षाओं को एक तरफ या दूसरी तरफ से समझना।
On one hand, we find people who misinterpret Gita that if you just perform your duty, that is Sanatan Dharma. So we should be very, very, very enthusiastic to perform our duty.
कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि बस अपना कर्तव्य करते रहो और बड़े उत्साह से कर्तव्य करते रहने पे ज्यादा जोर देते हैं।
And we should work very hard.
और बहुत मेहनत करनी चाहिए।
And then we are entitled to enjoy.
बस फिर हमें भोग करने की इच्छा हो जाएगी।
This is against the principles of Gita.
ये गीता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
जग्यारथात कर्मणोन यात्रा लोको मम कर्म बंधन थारथाम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। कृष्ण टेल्स अस इन गीता that whatever work you do must be as an act of service, sacrifice to the Supreme Lord.
Krishna Bhagwan Gita mein kehte hain ki aap jo kuch bhi karte hain wo Bhagwan ki seva ke liye hona chahiye.
If we do not surrender the fruits of our labor to Krishna, all our work creates another rebirth in the entanglement of karma.
Agar hum apne karmon ko Krishna samarpan nahi karte to wo hame punarjanam ka karan ban jata hai.
Gita does not teach that work is worship.
Gita में नहीं बताया गया है कि कार्य करना यही पूजा है.
Work that is done in a spirit of bhakti is worship.
अगर कार्य भक्ति भावना से किया जाए तो वो आराधना माना जा सकता है.
Bhakti means to offer our consciousness and everything we have for the pleasure of God.
भक्ति का मतलब ये है कि अपनी चेतना और सब कुछ कृष्ण के समर्पण करना.
So the other extreme of misconception is if everything belongs to God, then we should not do anything.
और दूसरी ओर लोग सोचते हैं कि सब कुछ भगवान का है इसलिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए.
If work is entangling, then we should become lazy.
कार्य से हम बंधन में फंस रहे हैं तो हमें आलसी बन जाना चाहिए.
We should all become sadhus.
हम सबको साधु बन जाना चाहिए.
And just lay around and three times a day beg for some rotis, fill our belly and then go to sleep.
हमें जो है तीन बार भिक्षा मांगनी चाहिए रोटी की और बाद में फिर सो जाना चाहिए.
And every now and then we say Narayan.
और कभी कभी बीच में नारायण बोल देना.
Just so that people will give us more rotis.
जिसे रोटी और ज्यादा मिलेगी.
And this is the way many sadhus live.
ऐसे कई साधु भी होते हैं.
They leave their families, they leave their occupations to become lazy.
वो अपने परिवार का त्याग करते हैं आलसी बनने के लिए.
When I was a young boy traveling in Himalayas, I met a sadhu like this.
जब मैं नौजवान लड़का था उस समय हिमालय में मेरे साधु मिले थे.
In fact, I met many sadhus like this.
ऐसे बहुत सारे साधु मुझे मिले.
But I'll tell you about one.
मैं एक के बारे में बताना चाहूंगा.
It was in Mithila.
ये मिथिला नगरी में था.
That holy place where Ram broke the bow and married Sita.
वो स्थान जहाँ पर भगवान राम ने जो है धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था.
And at the steps of Ram Mandir, there was a very famous sadhu that was sitting.
और वो मंदिर के सीढ़ियों के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु थे.
And there were hundreds of people lined up to receive his darshan.
100 लोग जो है उसके दर्शन के लिए खड़े थे लाइन में.
They were all touching his feet and asking him for blessings.
सब उसके चरणों को पकड़कर उसका आशीर्वाद मांग रहे थे.
And giving him some gifts.
और उसको भेंट दे रहे थे.
So I was thinking that I should also get blessings.
तो मैंने सोचा मैं भी आशीर्वाद ले लूंगा.
So I stood in line.
मैं भी लाइन में खड़ा हो गया.
I was only a teenage boy. I didn't know so much.
उसमें मैं नौजवान लड़का था मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं था.
So when I came to the front of the line, he told me, "Please sit beside me."
फिर उन्होंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि आप मेरे साथ बाजू में बैठिए.
And I sat.
और मैं बैठ गया.
He spoke English.
वो इंग्लिश जानते थे.
He was a very educated man.
वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे.
All the people that were in line, they did not know English.
बाकी लोग जो लाइन में थे वो इंग्लिश नहीं जानते थे.
So he was speaking very openly to me.
इसलिए वो बड़े खुले ढंग से बोल रहे थे.
He said, "Where are you from?"
पूछा कहाँ से हैं आप?
I said, "I am from the United States of America."
मैंने बताया कि मैं अमेरिका से.
He said, "What are you doing in India?"
मतलब भारत में क्या कर रहे हो?
I said, "I am searching for God."
मैंने बताया कि भगवान के लिए खोज रहा हूँ.
He said, "But you are in the robes of a sadhu with a begging pot."
लेकिन आप साधु के वेश में हैं भिक्षा पात्र लिए.
You think you will find God like this?
इस तरह से क्या भगवान मिलने वाले
हैं? I said, "Well, you are doing also like this."
तो हमने से कहा कि तुम भी तो ऐसा ही कर रहे हो.
He said, "I am not doing this in search of God."
बोले मैं भगवान की खोज के लिए नहीं कर रहा.
I am doing this in search of rotis.
मैं रोटी के खोज में कर रहा हूँ.
He said, "In fact, there is no God."
और वास्तव में भगवान है ही नहीं उन्होंने बोला.
He said, "In this part of India, you do not even get rotis. You only get chawal."
और यहाँ तो रोटी भी नहीं मिलती सिर्फ चावल मिलता है.
Chawal and dal.
चावल और दाल.
He said, "You've given up all the comforts of America."
आपने सारे अमेरिका के सुखों का त्याग कर दिया.
Nice cars, nice telephones, nice wealth, beautiful women. You have given up all this.
ये कार और ये स्त्री और ये सब का कैसे त्याग कर दिया आपने?
You are crazy. You should go back and enjoy your life.
तुम पागल हो. तुम्हें वापस जाकर जीवन का भोग करना चाहिए.
If you take the role of a sadhu, at the end of your life, all you'll have received is chawal and dal.
अगर आप साधु बनोगे तो अंत में सिर्फ चावल और दाल ही मिलेगा.
So I was asking him why all these people are touching your feet.
फिर मैंने पूछा कि सब लोग आपके पैर क्यों छू रहे हैं?
And receiving blessings.
और आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं?
And he replied, "Because they are fools."
बोला क्योंकि ये सब मूर्ख हैं इसलिए.
So I said, "Well, I will not be such a fool, so I will go away from you."
मैंने बोला मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा.
So some people become like this because they are simply lazy.
कुछ लोग ऐसा होते हैं क्योंकि वो बहुत आलसी होते हैं.
They do not want to work and carry out their responsibility.
वो अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते.
This is not what Gita teaches.
ये गीता ऐसा नहीं सिखाती है.
Gita is teaching a real civilized worth life with dignity and integrity.
जो गीता सिखा रही है कि कैसे शुद्धता से जीवन को बिताना है.
According to your particular status of varna and ashram, you must perform your work in a mood of devotion.
अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति को अपना कर्तव्य भक्ति भावना से करना चाहिए.
With faith in God.
भगवान में श्रद्धा रखते हुए.
भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुन. Krishna says it is only by devotion that you can know me in truth.
कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति के द्वारा तुम मुझे सत्य से जान सकते हो.
People with no devotion, they cannot experience what is the beauty of spiritual life.
जिनको की अनुभव नहीं होता वो आध्यात्मिक जीवन का कर्तव्य नहीं जान पाते.
So when we take to the spiritual path, we must be willing to perform our duties very carefully with all of our actions aimed at pleasing Krishna.
जब हम आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करते हैं तो अपने सारे कर्तव्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए.
And there is a wonderful example of such a personality in the Srimad Bhagavatam.
और श्रीमद् भागवत में ऐसे एक व्यक्ति का वर्णन आता है.
His name was Maharaj Ambarish.
और वो है महाराज अम्बरीश.
The son of King Nabhaga.
वो नाभाग के सुपुत्र थे.
Maharaj Ambarish was the king of the entire earth planet.
वो पूरे पृथ्वी लोक के राजा थे.
All of the islands, all of the continents, all of the seas were under his control.
सब कुछ समुद्र और द्वीप सब कुछ उनके ही वश में था.
But he was such a great devotee of the Lord that he was not attached to anything.
इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि वो किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं थे.
Except pleasing Krishna.
वो सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे.
Although he had so immense wealth, prestige, power, he considered all the opulence of this world and even the opulences of the heavenly planets to be insignificant and useless.
हालांकि उनके पास सब कुछ था तो भी वो इस दुनिया के सुख और स्वर्ग के सुख को सब बेकार मानते थे.
But he utilized them and saw their value is only in serving God.
लेकिन उन्होंने इसका उपयोग किया भगवान की सेवा के लिए.
Maharaj Ambarish ruled his citizens in such a way that everyone in the kingdom were devotees.
उन्होंने राज्य इस तरह स्थापित किया कि उनके राज्य में सभी भक्त हो गए.
Because he was such a devotee himself.
क्योंकि वो स्वयं ऐसे भक्त थे.
As great people do, the common people follow.
जैसे महान लोग कार्य करते हैं साधारण लोग उन्हीं का अनुगमन करते हैं.
He would perform wonderful yajnas.
वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे.
He would always be immersed in chanting the holy names.
वो हमेशा भगवान के नाम में रत रहते थे.
He was worshipping the deities.
वो विग्रह की आराधना करते थे.
Savai mana krishna padaravindayo. All the mind and senses of Ambarish were fully engaged in God's service.
सारे मन और इंद्रिय अम्बरीश महाराज के भगवान की सेवा में लगे थे.
Although he was a grihastha with a wife, with children, with a home, he set the example that every grihastha should follow.
हालांकि वो गृहस्थ थे उनके पत्नी बच्चे थे लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया जो हर गृहस्थ को पालन करना चाहिए.
With his eyes he would see the beautiful form of the deity and see the beautiful holy places like Vrindavan and Mathura.
वो आंखों से जो है भगवान की सुंदरता और भगवान के पवित्र धाम के दर्शन करते.
With his mind he was always engaged in thinking of various ways of serving the Lord.
अपने मन से वो हमेशा सोचते रहते भगवान के कितने ढंग से सेवा की जा सकती है.
With his ears he would hear the names and glories of Krishna.
उन कानों से भगवान के गुण और नामों का श्रवण करते.
With his nose he would smell the fragrance of the flowers and incense offered to Krishna.
और अपने नासिका से भगवान को अर्पण किए हुए फूल और अगरबत्ती का स्वादन करते.
With his tongue he would taste the prasad of Krishna and taste the sweetness of his holy name.
और जीवा से भगवान कृष्ण के नाम और भगवान के प्रसाद का पान करते.
With his hands he would engage in such simple services to the Lord like cleaning the temple.
और अपने हाथों से भगवान के मंदिर मार्जन करते थे.
Even though such a great king, he never considered himself great, But he always considered himself the very humble servant of the Lord and the Lord's devotees.
हालांकि वो इतने बड़े राजा थे, अपने आप को वो कभी महान नहीं मानते, भगवान और भगवान के भक्तों का दास मानते थे.
With his legs, he would go to the temple to associate with the real sadhus and offer service to the Lord.
अपने पैरों से वो भगवान के सच्चे भक्तों का संग करने के लिए जाते.
And with his desires, he was constantly immersed in making wonderful arrangements. To spread Krishna consciousness.
और अपनी इच्छाओं से वो भगवान के प्रचार के लिए प्रयास करते रहते.
In this way, every aspect of his life was engaged in bhakti.
इस तरह हर एक अंग जो है उनका भक्ति में लगा था.
And still, his responsibility as king, as father, was so perfectly performed, and he did everything with the guidance and direction. Of the great devotees.
और वो जो कुछ भी करते वो महान भक्तों के निर्देश में ही ये कार्य करते.
This is a very important principle.
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है.
Every great Vaishnav is anxious to receive guidance from other great Vaishnavas.
हर एक महान वैष्णव जो है दूसरे वैष्णवों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है.
Maharaj Ambarish, he was not only king, but he was a Mahabhagavat.
वो न केवल एक राजा थे बल्कि वे महाभागवत थे.
But still. As a principle, he would not do anything in his kingdom without consulting with the great Brahmins and Vaishnavas for guidance.
कुछ भी वो करते तो पहले ब्राह्मणों के वैष्णवों की सलाह लेते थे, फिर वो करते थे.
As long as we are depending on great souls, we are always protected from Maya.
अगर हम हमेशा महात्माओं की शरण लेते हैं, तो हमेशा माया से बच सकते हैं.
But as soon as we think. As soon as we dare to think that we are so advanced that we do not require the protection and the guidance of great souls, whoever we are, our intelligence will be taken away by Maya.
लेकिन अगर हम कितने भी बड़े हों, अगर हम सोचते हैं कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, तो माया हमारी बुद्धि को हर लेती है.
Maharaj Ambarish showed that the greater you are in spiritual life, the more humble you become.
उन्होंने अपने उदाहरण से बताया कि जितना आप भक्ति में ऊपर बढ़ते हैं उतना आप नम्र बन जाते हैं.
In material life, the greater we become, the more proud we become.
भौतिक जीवन में तो ज्यादा अभिमान हो जाता है बढ़ते बढ़ते.
In material life, the greater and more successful we are, the more we consider ourselves an authority.
और भौतिक जीवन में जितना हम ऊपर उठते हैं हम अपने आप को बड़ा अधिकारी मानते हैं.
But in spiritual life, our spiritual progress is dependent on how much we are increasing our dependence. On the gracious blessings of God and His devotees.
आध्यात्मिक जीवन में जितना हम ऊपर उठते हैं उतना ही भगवान और उनके भक्तों के आशीर्वाद पर निर्भर रहते हैं.
So because Ambarish Maharaj was so exemplary, he considered that the beautiful process of serving the Lord was so completely satisfying to his heart. That he was not concerned in any way for any of the enjoyments of this world.
तो क्योंकि अम्बरीश महाराज इतने भगवान की सेवा में लगे थे, इसीलिए वो इस दुनिया के सुख में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे.
And whatever he did for the welfare of others.
और जो भी वो करते, वो दूसरों के कल्याण के लिए ही करते थे.
This is the symptom of a great person.
ये एक महात्मा पुरुष के लक्षण हैं.
He is willing to endure great sacrifices for the benefit of other living beings.
वो दूसरों के कल्याण के लिए बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं.
Whatever good things a king does, the whole kingdom gets the benefits.
जो भी कोई अच्छे कार्य राजा करता है, पूरे राज्य को उसका लाभ प्राप्त होता है.
So he decided to perform the Ekadasi and Dwadasi fast for one full year.
तो उन्होंने निश्चय किया कि एकादशी द्वादशी का व्रत रखेंगे पूरे एक साल के लिए.
And at the end of the year, he went to Vrindavan.
और उस साल के पूरा होने पे वे वृंदावन गए.
To the forest of Madhuban,
जो मधुवन का वन है,
on the banks of the river Jamuna,
यमुना जी के तट के ऊपर.
This is the same place that Dhruva Maharaj performed his tapasya.
ये वही स्थान है जहाँ पर ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या की थी.
There, he worshipped Lord Krishna.
वहाँ उन्होंने कृष्ण की आराधना की.
And during the last day of his Ekadasi Vrat, he performed beautiful abhishek for the deity of Krishna.
और आखिरी दिन उन्होंने भगवान का अभिषेक करवाया.
This is very interesting.
ये बहुत रुचिकारक है.
This took place in Satyuga,
ये कथा सत्ययुग में हुई थी,
which is millions of years ago,
जो कि लाखों साल पहले की बात
and
है.
How Ambarish Maharaj is constantly referred to by his devotion in serving the murti in the temple.
कैसे उनका वर्णन किया जाता है कि वो भगवान की मूर्ति की सेवा करते थे.
Recently, one person, a Brahmin, came to me and told me, you know, in the Hindu tradition, temples are something very recent.
एक ब्राह्मण महाराज के पास आए, बोलने लगे कि ये जो मंदिर है, ये तो अभी अभी शुरू किए गए मंदिर की पूजा.
In the Vedic culture, there was no murtis.
वैदिक संस्कृति में मूर्ति होती ही नहीं थी.
Everything was yajna and mantra.
सब कुछ यज्ञ और मंत्र पर आधारित रहता था.
It was the Jains that introduced deity worship.
ये तो जैन ने यह मूर्ति पूजा की आरंभ किया है.
And the insecure Hindus accepted this idea of murti and temple as an imitation of the Jains.
और ये हिंदुओं ने जो है जैन की नकल करके इसको स्वीकार किया है.
Which just happened over the last 1,000 years or so.
ये सिर्फ पिछले 1,000 साल से ही ऐसा हुआ है.
But I told him, you are speaking all nonsense.
हमने उनसे कहा आप सब बकवास कर रहे हैं.
According to Srimad Bhagavatam, Ambarish Maharaj in Satya Yuga was constantly worshipping the deity in the temple, performing abhishek and doing the arti.
क्योंकि महाराज अम्बरीश जो है ये शुरू से ही आरती कर रहे थे जबकि वो सत्ययुग में रहते थे.
This process of deity worship is not idol worship.
ये जो मूर्ति की पूजा है वो ऐसी नहीं जैसे कि कोई खाली पुतला बनाया हो.
It is one of the oldest processes.
ये सबसे पुराना तरीका है.
Of spirituality.
आध्यात्मिक जीवन का.
Completely authorized by all the acharyas and all the scriptures.
सभी शास्त्रों आचार्य द्वारा ये अधिकृत किया गया है.
And great devotees have been worshipping the murti since time immemorial.
और महान भक्त जो है मूर्ति की आराधना कर रहे हैं बहुत समय से.
So as he was ending his fast on the last day, he was inviting all the brahmins and all the vaishnavas and everyone to have nice prasad.
तो वो सबको निमंत्रण कर रहे थे ब्राह्मणों को वैष्णवों को कि आकर प्रसाद ग्रहण करिए.
No proper yajna is complete without distribution of prasad.
कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता बिना प्रसाद वितरण के.
Of course we know that in this age of Kali Yuga there is only one yajna that is recommended.
और हम जानते हैं कि कलयुग में तो सिर्फ एक ही यज्ञ है जो कि किया जा सकता है.
And that is the congregational chanting of Krishna's holy name.
और वो है कृष्ण का नाम संकीर्तन.
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
This is the yajna that purifies not only ourselves but the whole creation.
न केवल अपने आप को शुद्ध होता है इससे बल्कि पूरी सृष्टि को इसका लाभ मिलता है.
And after such yajna there should always be distribution of prasad.
और ऐसे यज्ञ के बाद हमेशा प्रसाद वितरण होना चाहिए.
Chanting, dancing and feasting.
कीर्तन नृत्य और प्रसाद.
In this order.
इसी ऑर्डर में होना
चाहिए. That is perfect yajna.
ये पूर्ण यज्ञ है.
And according to the shastra, this congregational chanting of the holy name when it is done sincerely in the association of devotees is more powerful than hundreds and thousands of ashwamedha yajnas.
और अगर ऐसा यज्ञ किया जाए भक्तों के संग में तो वो कई सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा शक्तिशाली है.
So let us always come together to chant the holy name.
Hare Krishna, 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 Hare.
After he was feeding all the Brahmins and everyone else sumptuously and giving them wonderful gifts, it just came to the Muhurta of the Dwadasi where it was required that he break his fast.
और ऐसा समय आया सबको प्रसाद खिलाने के बाद कि उनको व्रत तोड़ने का समय आ चुका था.
At that time, Durvasa Muni came.
उस समय दुर्वासा मुनि वहां प्रकट हुए.
Ambarish Maharaj bowed down at this great saint's lotus feet.
Ambarish Maharaj unke charan kamalon mein jhuk pade.
Offered him nice sitting place.
Unko asan diya baithne ke liye.
Told him, Maharaj ji, please take nice prasad.
Aur unne kaha ki Maharaj aap kripaya ye acha prasad grahan kariye.
Durvas Muni replied, yes, I will certainly accept your prasad, but first I will take my bath in Jamuna.
Unhone kaha ki main aapka prasad swikar karunga lekin pehle Jamuna ji mein snan karunga.
So he went to Jamuna.
वो यमुना जी में गए.
And after taking his bath, he went into samadhi.
और फिर स्नान करने के बाद वो समाधिस्थ हो गए.
He began to meditate on the impersonal Brahman.
वो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करने लगे.
And he forgot everything about time.
वो समय के बारे में भूल गए.
Meanwhile, for Ambarish's whole year-long fast, which was for the benefit of all living beings, to be successful, he had to break it at the next moment.
तो और समय जो है उनको व्रत को तोड़ना आवश्यक था जो कि दुनिया के कल्याण के लिए वो यज्ञ कर रहे थे.
So he turned to the Brahmins, the devotees, and he asked, "What should I do?"
उन्होंने ब्राह्मण और भक्तों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए?
A devotee will never act independently.
एक भक्त अपने आप स्वतंत्रता से कार्य नहीं करेगा.
Even the greatest Mahatmas, whatever they do, they will make sure they get the blessings of other great souls before they do.
बड़े से बड़े महात्मा भी जब भी कोई कार्य करेंगे तो जरूर दूसरे महात्माओं का आशीर्वाद लेंगे.
This is the principle of humility.
ये नम्रता का सिद्धांत है.
So he explained to his Brahmin Vaishnav ministers that to break the fast I must do, but at the same time it is impolite to eat before feeding your guest.
उन्होंने समझाया कि देखो मुझे व्रत के लिए खाना आवश्यक है लेकिन मेहमान से पहले खाना भी ठीक नहीं है.
But if I drink little water, according to the Shastra, drinking water is breaking, but not breaking fast.
अगर मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ तो व्रत तोड़ने के बराबर भी है नहीं तोड़ने के भी बराबर है.
So with folded hands, he prayed to the Supreme Personality of Godhead, and he drank little water.
तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने थोड़ा सा जल ग्रहण किया.
Durvasa Muni returned.
दुर्वासा मुनि वापस लौट आए.
He was very angry.
वो बड़े गुस्से हुए.
He knew by his mystic power that Ambarish had drunk water.
उनको अपने योगिक शक्ति से पता चल गया कि अम्बरीश ने पानी पी लिया है.
He became very cruel.
वो बहुत क्रोधित हो गए.
He said, "You are not a Brahmin. You are not a king. You are not a gentle person. You are a very cruel, terrible person who does not know the principles of religion."
वो बताने लगे कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, राजा नहीं हो और कुछ नहीं हो, एक क्रूर व्यक्ति हो.
You could not even control your senses.
आपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए.
You took water before feeding me.
मेरे को भोजन खिलाए बिना तुमने पानी ग्रहण कर लिया.
Therefore, you must die.
इसलिए तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए.
And he took hair from his head and created a demon made out of fire.
और उन्होंने अपने जो है अपने बाल से एक बाल निकाला और एक कृत्या पैदा की राक्षस.
Same type of fire that destroys the whole cosmic creation.
ये ऐसी अग्नि थी कि जो कि पूरे प्रलय के सब को जला देती है.
And this monstrous demon of fire came to Ambarish with a trident to kill him.
और ये असुर जो है एक त्रिशूल लेकर आ गया अम्बरीश पर आक्रमण करने के लिए.
Ambarish did not try to run away.
अम्बरीश ने भागने का प्रयास नहीं किया.
He just stood in one place and began to pray to Lord Narayan.
वो एक ही स्थान पर खड़े रहे और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे.
He did not pray protect me.
उन्होंने ये नहीं प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करो.
He did not even pray to save me.
उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझे बचाओ.
He just prayed, "Let me remember you."
बस मैं आपका स्मरण कर सकूं.
Because if you remember Krishna, it does not matter what happens.
अगर आप कृष्ण को याद करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए.
If you remember Krishna with devotion, Krishna always responds to his devotees.
अगर आप भक्ति से कृष्ण को याद करते हैं तो हमेशा कृष्ण उसका आदान प्रदान करते हैं.
कौन्तेया प्रति जानेहि न मे भक्त प्रणश्यति. Krishna has given the word that he will never allow his devotee to be defeated.
Krishna ne apna vachan diya hai ki unke bhakt ka kabhi nash nahi hoga.
If you remember Krishna and you die, you get eternal life in the spiritual world.
Agar Krishna ko yaad karte hain mrityu ho jati hai to aap bhagwan ke dham pravesh karte hain.
And if you remember Krishna and live, you get the kingdom of God within.
Aur agar aap jeevit rehte hue Krishna ka smaran karte hain to aapko hriday ka jo bhagwan ka dham milta hai.
Krishna knows best how to protect.
कृष्ण जानते हैं कि क्या सर्वोत्तम है रक्षा करने के लिए.
Simply we remember Krishna.
हमें सिर्फ कृष्ण को याद करना चाहिए.
By chanting his name.
उनका नाम कीर्तन करते हुए. हरे कृष्णा.
This is the perfection of all religion.
यही सब धर्म की पूर्णता है.
This is the fulfillment of all duties in life.
ये सारे कर्तव्यों की पूर्णता इसी में है.
To always remember Krishna.
हमेशा कृष्ण का स्मरण करना.
To never forget Krishna.
और कृष्ण को कभी नहीं भूलना.
Through associating with saintly people.
साधु पुरुषों का संग करते हुए.
And chanting his holy name.
और उनका नाम कीर्तन करते हुए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
that time, Lord Vishnu, who is the super soul in everyone's heart, responding to the prayers of Ambarish, sent his Sudarshan Chakra.
उस समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा.
This chakra completely destroyed the fiery demon.
और उसने जो है वो असुर का नाश कर दिया.
And then it came to destroy Durvas.
और फिर वो दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ा.
Durvas was not such a great soul as Ambarish.
दुर्वास जो है वो इतने बड़े महात्मा नहीं थे जितना अम्बरीश महाराज.
He ran away.
वो दौड़ने लगे.
He ran and he ran. He tried to hide in the caves of the Mount Sumeru.
वो सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपने का प्रयास करने लगे.
He tried to hide in the bottom of the ocean.
वो सागर के नीचे जाके छुपने का प्रयास करने लगे.
But right behind him was Sudarshan.
लेकिन उनके पीछे भी सुदर्शन लगा हुआ था.
After failing to find any relief in this whole planet, he started going to the higher planets.
वो इस लोक को छोड़कर फिर उच्च लोक जाने लगे.
He had such mystic powers. He could fly to other planets.
उसमें इतनी योगी शक्ति थी कि वो दूसरे लोक तक उड़ सकते थे.
Ultimately, he went to Brahmaloka.
अंत में ब्रह्मलोक पहुंच गए.
And he fell at Lord Brahma's lotus feet.
वो ब्रह्मा जी के चरण कमलों में गिर पड़े.
And said, "Please save me from this Sudarshan chakra."
कृपया मेरे को सुदर्शन चक्र से बचाओ.
And Brahma said, "I am very sorry."
ब्रह्मा बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता.
Vishnu is the Lord of everyone.
विष्णु सबके स्वामी हैं.
Even Brahma, myself, and Shiva, we are all the servants of Lord Vishnu.
हम सब जो हैं ब्रह्मा शिव ये सब उनके सेवक ही हैं.
He is creating, maintaining, and destroying everything through us.
वो हमारे द्वारा सृष्टि का सृजन पालन और संहार कराते हैं.
Krishna wants to kill you. Only Krishna can protect you.
सिर्फ कृष्ण ही जो है तुम्हें मारना चाहे कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं.
So then Durvas Muni, in great desperation, with the heat of the chakra behind him, he went to the spiritual planet of Lord Shiva called Kailash.
तो उसके बाद वो वहाँ से शिवजी के धाम कैलाश पर्वत पहुँच गए.
And he begged Lord Shiva for protection.
और वो शिवजी से जो है सुरक्षा मांगने लगे.
And Lord Shiva told him, "I am very sorry."
शिवजी ने भी बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता.
That the chakra of Vishnu is infallible.
क्योंकि जो सुदर्शन चक्र है वो अच्युत है.
That Krishna is the source of everything that exists.
Krishna hi sab cheezon ke stotr hain.
And he is ultimately the destroyer of everything that exists.
Wo sab cheezon ka nash karne wale bhi wahi hain.
Everything is working under his control.
Sab kuch unke vash mein chal raha hai.
And Brahma and myself and everyone else are his servants.
Aur Brahma aur main aur sab unhi ke sevak hain.
Only Vishnu can save you.
Sirf Vishnu hi tumhe bacha sakte hain.
So then he went all the way to Vaikuntha.
फिर वहाँ से वैकुंठ चले.
And he fell at the lotus feet of Lord Narayan.
वहाँ नारायण के चरण कमलों में गिर पड़े.
And with great, great humility, he prayed that I have offended your devotee. I am very sorry. Please forgive me and save me from this burning chakra.
और बड़े नम्रता से गिरकर बोलने लगे कि मैंने अपराध किया. आप कृपया मेरे को इससे बचाइए.
And Vishnu explained that because you have offended my devotee, this is very bad.
और भगवान विष्णु ने बताया कि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है ये बहुत बुरी बात है.
Because my devotees have surrendered their lives to me, I have surrendered my lives to my devotees.
क्योंकि भक्त ने जो है अपना जीवन मेरे प्रति समर्पित किया है मैं अपना जीवन भगवान आपके प्रति समर्पित करते हैं.
Because I am always in the heart of my devotee is always prominent in my heart.
और मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और मेरे हृदय में भक्त रहते हैं.
He explained, just as a chaste wife, by serving her husband so nicely, the husband comes completely under her control. Similarly, because my devotees, with such chastity and faithfulness, serve me, I am completely under their control.
जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री जो है अपनी सेवा के द्वारा पूर्ण रूप से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार से मैं जो है भक्तों के वश में हो जाता हूँ.
The Lord said, "All the opulences and beauty and wealth of the spiritual world do not give me enjoyment."
वो बोले कि पूरे आध्यात्मिक धाम के भी ऐश्वर्य मुझे आनंद नहीं देते.
It is only the love and the service of my devotees that give me enjoyment.
वो सिर्फ भक्तों का प्रेम और सेवा है जो कि मेरे को आनंद प्रदान करता है.
Therefore, if you want to be freed from this offense, You must get the blessings of Ambarish Maharaj.
अगर आप इस अपराध से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको अम्बरीश महाराज का आशीर्वाद लेना होगा.
Because I am his property.
क्योंकि मैं उनकी संपत्ति हूँ.
I am surrendered to him.
मैं उनके प्रति समर्पित हूँ.
So Durvasa Muni went back to Madhuban.
वो वापस मधुबन गए.
Meanwhile, Ambarish, for one full year, was standing there waiting for Durvasa to return.
और वहाँ पर अम्बरीश महाराज एक साल तक खड़े हुए थे कि दुर्वासा लौट कर आएंगे.
Because Durvasa Muni still had not eaten his prasad, Ambarish did not eat anything for one year.
क्योंकि दुर्वासा ने प्रसाद अभी तक ग्रहण नहीं किया था, तो इसलिए अम्बरीश ने भी एक साल के लिए कुछ प्रसाद नहीं लिया.
This was what type of a person he was.
हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति वे थे.
So Durvasa fell at the lotus feet of Ambarish Maharaj and with tears in his eyes, he began to beg forgiveness.
और दुर्वासा मुनि जो है रोते हुए उनके चरण कमलों में गिर गए और माफी मांगने लगे.
You are such an exalted personality.
आप इतने महान व्यक्ति हैं.
And I have offended you because I could not recognize you.
मैंने आपके प्रति अपराध किया है क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं सका.
Materialistic people. Even great yogis are materialistic people.
बड़े बड़े योगी भी जो है भौतिकवादी होते हैं.
Sometimes they think devotees are ordinary people.
वो सोचते हैं कि भक्त साधारण व्यक्ति हैं.
Because devotees, their tendency is not to display any great things to impress others.
क्योंकि भक्तों की प्रवृत्ति होती है कि वो ज्यादा जो लोगों को दिखाना नहीं चाहते.
Durvasa Muni had all the eight mystic perfections, anima, lagima, prapti, etc.
दुर्वासा मुनि के अंदर जो ऐसे सारे आठों सिद्धियां थी.
अम्बरीश वॉज जस्ट अ वेरी सिंपल हम्बल गृहस्थ किंग.
अम्बरीश जो बहुत एक सरल गृहस्थ राजा थे.
दुर्वासा मुनि प्रेड प्लीज फॉरगिव मी.
दुर्वासा मुनि जो है प्रार्थना करने लगे कृपया मेरे को माफ कर दो.
एट दैट टाइम महाराज अम्बरीश बिगन टू प्रे टू द सुदर्शन चक्र.
उस समय महाराज अम्बरीश जो है सुदर्शन चक्र को प्रार्थना करने लगे.
फर्स्ट ही बिगन टू प्रेज द पावर ऑफ द सुदर्शन
चक्र. पहले वो सुदर्शन चक्र के जो शक्ति है उसकी स्तुति करने लगे.
द मोस्ट इंटीमेट वेपन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड.
जो कि भगवान का बहुत ही निकट का जो है अस्त्र है.
हु कुड डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एनीवन एट एनी टाइम.
वो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी मार सकते हैं.
वाज ऑल ग्लोरियस एंड ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द लॉर्ड्स डिवोटीज.
वो हमेशा यशस्वी है और भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं.
अम्बरीश prayed
Amrish ne prarthna ki
that dear sudarshan
priya sudarshan
if myself and my family and all of my ancestors have ever done any good charity have any ever performed any pious or devotional works please let the credit go to saving durvas from your wrath.
बताने लगे कि अगर हमारे परिवार में या पूर्वज में कभी किसी ने कोई अच्छा कार्य किया हो दान किया हो तो उसका फल जो है ये दुर्वासा मुनि की रक्षा के लिए लिया जाए.
If I have ever served the deity or worshiped the supreme personality of Godhead sincerely ever in my life, please let all the credits go to protecting Durvasa.
अगर मैंने कभी भी भगवान के विग्रह के सच्चे दिल से आराधना की हो तो उसका फल भी जो है दुर्वासा मुनि की रक्षा के लिए हो.
Let all of my religious merits and all of my devotional practices go to the welfare of Durvasa Muni.
मेरे सारे धार्मिक कार्यों के जो फल हैं वो दुर्वासा मुनि की रक्षा के लिए जाएं.
I pray to you, O Sudarshan, please relieve him of your wrath.
मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि सुदर्शन तुम जो है उसको क्रोध से शांत हो जाओ.
Upon hearing these prayers, Sudarshan left.
और ये प्रार्थना सुनने के बाद सुदर्शन चले गए.
Durvasa Muni could see what is a Vaishnava.
दुर्वासा मुनि ये देख सकते थे कि वैष्णव क्या होते हैं.
The same man who tried to murder him with anger and abused him with the most harsh and insulting words, he was willing to exhaust all his religious credits to protect him.
वही व्यक्ति जो उनकी इतनी निंदा कर रहा था उनको मारने के तैयार हुआ था उसके लिए भी अपने सारे पुण्य कार्यों के फल देने के लिए तैयार हो गए थे.
This is the symptom of real detachment.
ये सही अनासक्ति का लक्षण है.
This is greater than sannyas.
ये सन्यास से भी ज्यादा महान है.
And when Durvasa Muni saw this, he began to praise Ambarish.
जब दुर्वासा मुनि ने देखा तो उनकी प्रशंसा करने लगे.
Ambarish said, "Do not praise me."
अम्बरीश ने कहा मेरी प्रशंसा मत करो.
Whatever is great is coming from Krishna.
जो भी महान है वो कृष्ण से ही आ रहा है.
I am nothing and I have nothing.
मैं कुछ नहीं हूँ मेरे पास है भी नहीं कुछ.
All credit goes to Krishna.
सब श्रेय कृष्ण को ही होता है.
Now please take prasad.
अभी प्रसाद लो.
And then he fed Durvasa Muni wonderful, wonderful, sumptuous prasad.
और फिर दुर्वासा मुनि को बड़ा पेट भर के सुंदर प्रसाद खिलाया.
And Durvasa Muni had nice feast.
दुर्वासा मुनि ने एक अच्छी फीस्ट खाई.
And then after washing his hands and saying goodbye, Ambarish, after years, he finally took prasad.
और फिर इस तरह से जब दुर्वासा मुनि चले गए तो कई सालों के बाद अम्बरीश महाराज ने प्रसाद लिया.
This is Bhagavad Gita.
ये भगवत गीता है.
Such detachment, such devotion, and such fearless faith in the Supreme Personality of God.
इतना अनासक्ति और भगवान में इतनी जो है श्रद्धा होना.
To develop these types of qualities is the purpose of human life.
मानव जीवन का उद्देश्य ये है कि ऐसे गुण को विकसित करना.
To realize that we are the eternal servants of God.
ये जानना कि हम भगवान के जो है नित्य सेवक हैं.
We are not these temporary bodies.
हम ये जो है ये शरीर नहीं है.
That are subject to disease, old age and death.
हमारे अंदर बीमारी मृत्यु और जन्म ये सब लगा रहे
हैं. We are the eternal soul.
हम नित्य आत्मा हैं.
We are meant to enjoy the unlimited pleasures of the soul.
हम आत्मा का जो आनंद लेना हमारा कर्तव्य है.
And that pleasure is in tasting the sweetness of Krishna.
और वो आनंद है कृष्ण के मिठास का अनुभव करने में.
And Krishna reveals himself according to how we surrender to his will.
और कैसे हम उनके इच्छा के लिए समर्पित करते हैं वैसे ही कृष्ण व्यवहार करते हैं.
To perform our duties in Krishna consciousness is the goal of life.
अपने कर्तव्य को कृष्ण भावना से करना यही जीवन का ध्येय है.
It is not only the process but it is the goal itself.
न केवल ये तरीका है बल्कि उद्देश्य भी यही है.
Bhakti is the only process which is so powerful that the process and the goal are one.
भक्ति एकमात्र तरीका है कि जिसमें कि विधि और उद्देश्य एक ही है.
In the ज्ञान योग process, you study knowledge, study knowledge, study knowledge. The goal is not to keep studying knowledge.
ज्ञान योग के तरीके में आप बहुत पढ़ते रहते हैं, ज्ञान एकत्र करते रहते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है.
The goal of ज्ञान is to go out of this cycle of birth and death and merge into Brahman.
और उसका उद्देश्य यह है कि जन्म मृत्यु से परे जाके ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए.
The goal and the process are completely different.
वहां पर उद्देश्य और विधि दोनों अलग अलग हैं.
And karma yoga, we perform so many pious and charitable acts, but the goal is not to perform more sacrifices.
कर्म योग,
the goal is to get tremendous amounts of heavenly enjoyments.
कर्म योग में जो है हम यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करना.
And through the mystic yoga system, we do tapasya. The goal is not so we could do tapasya forever.
और ये योगिक सिस्टम में तपस्या करते हैं, उसमें तपस्या करना हमारा उद्देश्य नहीं है.
We sit in dhyan to perform meditation. The goal is not to sit and meditate forever.
हम ध्यान करते हैं, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ ध्यान ही करना है.
The goal is to get great powers and ultimately liberation.
और उद्देश्य ये है कि बड़े शक्ति प्राप्त करना और अंत में जो है मुक्ति प्राप्त करना.
But when they asked our Guru Maharaj, Om Vishnupad Paramhans, she A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. What do you hope to get from all this chanting of Hare Krishna?
तो जब हमारे गुरु महाराज A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada से पूछा गया कि आपको ये जो है जप करने से कीर्तन से क्या मिलता है?
Guru Maharaj replied, the goal we are striving to achieve by chanting Hare Krishna is to always chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
We render service to Krishna, and what do we hope to achieve? Eternal service to Krishna.
हम कृष्ण की सेवा करते हैं और उसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कृष्ण की नित्य सेवा.
In the path of bhakti, the path and the goal are identical.
भक्ति के मार्ग में जो मार्ग है और जो उद्देश्य है वो दोनों एक ही होते हैं.
The difference between the preliminary stages of bhakti and the liberated stages of bhakti is at this time we are serving in sadhana. Because we have material desires, we somehow or other perform the austerity of doing our sadhana or seva to overcome those material desires.
अभी जो हमारी अवस्था है, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको पार कर सकें.
But in the pure state, we are performing the same service.
लेकिन शुद्ध अवस्था में भी हम वही सेवा को करते हैं.
But in ecstatic love.
वो जो है भाव में करते हैं.
Free from all material desires.
सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त.
This is bhakti.
ये भक्ति है.
And this is what Bhagavad Gita teaches.
और यही भगवद गीता सिखाती है.
सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. that we should abandon all other religious principles.
हमें सब दूसरे तथाकथित धर्मों का त्याग करना चाहिए
and just surrender to Krishna.
और कृष्ण को समर्पण करना चाहिए.
How man mana bhava mad bhakto mad jajim nam namas kuru. By always thinking of Krishna.
हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हुए.
By worshipping Krishna.
कृष्ण की आराधना कर.
By offering your homage to Krishna.
और कृष्ण को प्रणाम करने.
And Krishna comes in this age of Kali Yuga to teach us the simple, wonderful method by which we can always think of Krishna and perfect the process of surrender.
और कृष्ण हमें आते हैं कलयुग में सिखाने के लिए एक सरल तरीका जिससे हम कृष्ण का चिंतन करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें.
We must keep association of very sincere devotees to protect our mind from being illusioned by Maya.
हमें अपने मन को माया से बचाने के लिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए कि जो भक्ति में आगे बढ़े हैं.
Sadhu sangam is the basis of all our spiritual life.
पूरे आध्यात्मिक जीवन का आधार है साधु का संग करना.
And in that sangam we perform the yuga dharma.
और उस संग में हम युग धर्म का पालन करते हैं.
Krishna is non different than his name.
कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है. कृष्ण का नाम लेगा वो कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहेगा.
Anyone who takes the name of Krishna sincerely will have the divine presence of Krishna within their minds and within their hearts.
और जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेगा वो उनके अपने मन में और अपने हृदय में भगवान का नाम का प्रकटीकरण देख पाएगा.
And gradually we become purified by the name himself.
और हम धीरे धीरे जो है नाम के बल से शुद्ध बन जाते हैं.
नित्या सिद्धा कृष्ण प्रेमा सज्ज कबु नोय श्रावणारी सुदे छुती कोरियै उदाय. महाप्रभु श्री चैतन्य has instructed that pure love of Krishna is within the heart of every living being.
Shuddha Krishna prem jo hai sab jeev ke hriday mein hai.
By chanting his name and associating with his devotees, this love of Krishna is awakened within our hearts.
Unka naam kirtan karne se jo bhakton ka sang karne se ye prem aage vikasit ho jata hai.
So how to live according to teachings of Gita is understood in this way.
और गीता के अनुसार कैसे जीवन बिताना है वो इससे जाना जा सकता है.
Whether you are a grihastha or a vanaprast or a brahmachari or a brahmachari or sannyasi, whether we are a brahman kshatriya vaishya shudra, these things are not very important.
हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है.
The important thing is that we perform whatever duty we are allotted in our life in a mood of surrender and devotion to Krishna.
महत्वपूर्ण चीज है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कृष्ण के समर्पण की भावना से करें.
There is no need to come and live in a temple.
ये आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर में आकर रहें.
There is a need for some people to take this life for the benefit of society.
कुछ लोगों को ऐसा करना आवश्यक होता है दुनिया के कल्याण करने के लिए.
And such rare souls who are willing to do this, we should respect their great sacrifice for our benefit.
और ऐसे दुर्लभ महात्मा जो करने के तैयार हैं उनके त्याग की हमें जो आदर करना चाहिए.
But for the general people to live with wife or husband, children, perform one's responsibilities in this world and to do it in Krishna consciousness is the path of perfection.
लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए पत्नी और बच्चों के साथ रहना और कृष्ण भावना में रहकर ये करना यही पूर्णता का मार्ग है.
Put the deity of Krishna in your home.
अपने घर में भगवान का विग्रह रखें.
Offer your home and all the food in your home to Krishna.
सब भोजन जो है भगवान को अर्पण करें.
Follow the principles of Krishna.
कृष्ण के सिद्धांतों का अनुगमन करें.
No eating of meat, fish or eggs, no intoxication, no gambling, no illicit sex.
जैसे कि मांस भक्षण नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना और जुआ नहीं खेलना.
Regularly chant the holy names.
नियम पूर्वक भगवान का नाम जप कीर्तन करना.
With the mala and in kirtan.
माला पर और कीर्तन में.
Regularly read the books of the great acharyas like Srila Prabhupada.
श्रीला प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों की पुस्तकों का अध्ययन करें.
Regularly serve and associate with devotees.
नियम पूर्वक भक्तों की सेवा करें और भक्तों का संग लें.
This life is the life of Bhagavad Gita.
ये ऐसा जीवन जो है भगवत गीता का जीवन है.
This is the gradual process of purification that will definitely take us back to the liberated condition of the eternal loving service of the Lord.
ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम वापस भगवान के धाम उनकी नित्य सेवा में लग सकते हैं.
So, do not think that you have a right to enjoy the things of this world.
ये कभी मत सोचिए कि दुनिया की चीजों का भोग करने का हमें अधिकार है.
Because this idea will cause you great suffering.
क्योंकि इस विचार से आपको बड़ा दुख होगा.
Do your duty for Krishna's enjoyment.
अपने सारे कर्तव्य को कृष्ण के लिए करिए.
With enthusiasm.
उत्साह के साथ.
Do not be lazy.
आलसी मत बनिए.
Spiritual laziness is the greatest disease in society.
आध्यात्मिक आलस्यपन ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है.
We work so hard, like the beasts of burden, to make a little money, but that money is perishable and brings no real happiness.
हम इतने ज्यादा गधे की तरह मेहनत करते हैं और जब कुछ पैसा मिलता है लेकिन वो पैसा हमें आनंद नहीं दे सकता.
We have no time for bhakti.
हमें भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है.
Which is the true wealth.
जो कि सच्ची संपत्ति है.
The source of all real happiness.
जो कि सच्चे सुख का स्रोत है.
So however busy you may be, make time for bhakti.
चाहे आप कितने बिजी हो भक्ति के लिए टाइम निकालिए.
It is your first duty of human life to chant the holy names regularly, to come to the temple to associate with the Lord's devotees, to read the scriptures and to perform seva for Krishna.
ये आपका पहला कर्तव्य है कि आप नाम जप करें, भक्तों का संग करें, कृष्ण की सेवा करें और गीता भागवत का अध्ययन करें.
Bhagavad Gita is a practical way of life for the everyday person of society.
भगवद गीता का जीवन एक व्यवहारिक जीवन है जो कि दैनिक जीवन में उतारा जा सकता है.
Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.
हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण.